ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामे प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोज्जः सहोजो मयि प्राणापानो जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातित्रिणम् बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे परमाद्वैतविज्ञानं कृपयायो ददाति वै सोऽयं गुरु गुरु साक्षात् शिव एव न संशय शिव एव न संशय ॐ शांति शांति शांति। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आई मुम्मापुरिस्थ प्रेमपुरी के नित्य स्वाध्याय प्रवचन में प्रश्नोत्तरी पहले उच्चारण। अपार संसार समुद्र मध्ये समज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदेत विश्वेष पादाम्बुज दीर्घनौका बद्धो हि को यो विषयानुरागी का वा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः को वास्ति घोरो नरकास्वदेह
सृक्ष्णाक्षयः स्वर्गपदं किमस्ति संसारह्यत्कः श्रुतिरात्मबोधः को मोक्षहेतु कथितः स एव द्वारं किमेकं नरकस्य नारि का स्वर्गदा प्राणभृता महिंसा शीते सुखं कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्ति को वा सदसा विवेकी केशत्र वसन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णा श्रीमाच्च को यस्य समस्त दोष जीवन्मृता कस्तु निरोध्यमो यः किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराश।
आइए चौथे श्लोक पर विचार श्रवण कर रहे थे। सेते सुखं कस्तु समाधि निष्ठो जागर्ति को वा सत् असद विवेकी केशत्र व संत निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। शिष्य अनेक प्रकार के शंकाओं को आचार्य से कर रहा है। पूछा कि बताओ महाराज, सुखपूर्वक कह सेते कौन सहन करता है। प्रत्येक प्राणी की सारा जो व्यापार है, व्यवहार है, कारोबार, वह इसलिए करता है कि जीवन में सुखपूर्वक शयन किया जाए, सुखपूर्वक रहा जाए। पर होता है विपरीत। क्यों विपरीत होता है? कि आपकी यात्रा विपरीत दिशा है। सोचते हैं कि फला संसाधन एकत्रित कर लो, बढ़िया बंगला बना लो, अच्छे मित्रों का संग्रह कर लो, इसके बाद बड़े मजे से, शांति से, सुखपूर्वक जीवन कटेगा। पर यह जो सोच है, यह सोच अनात्मक है, आत्मविषयक नहीं। आचार्य कहते कि समाधि निष्ठा, मनुष्य की जहां पर निष्ठा होती है वहीं पर रहता है। निष्ठा का हेतु है प्रीति। जिस विषय में हमारी सर्वाधिक प्रीति होती, प्रीति मतलब की रुचि, उसमें स्वाभाविक निष्ठा बन जाती है, निष्ठा पैदा नहीं करना पड़ता। और जहां पर अप्रीति हो वहां तो आप लोक लाज, समाज व्यवहार या लोग क्या कहेंगे, खाली एक तरह से आप औपचारिकता पूरी करते हैं। तो आचार्य कहते कि समाधि में निष्ठा होना चाहिए। समाधि बोलते हैं कि जहां पर चित्त आपका अच्छी तरह से शांत हो जाए। समाधि की व्याख्या है, हिंदी भाषा में करो, संस्कृत में बोलते हैं सम्यक प्रकारेण आधीयते चित्तम यस्मिन तत् समाधि। जहां पर चित्त आपका अच्छी तरह शांत हो जाए उसका नाम समाधि। जब आप भगवत आराधना करते हैं, जप करते, ध्यान करते, चित्त बहुत शांत हो जाता है, तो चाहे कोई भी आपके इष्ट देवता हो, अपने इष्ट देवता का जो चिंतन है वही चिंतन समझो समाधि है। और तन्निष्ठ होने पर ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। सबकी रुचि, संस्कार, जन्म जन्मांतर के भिन्न भिन्न है, इसलिए यहां पर समाधि निष्ठ शब्द का प्रयोग किया। यदि एक देवता शब्द का प्रयोग करते तो अन्यत्र अग्राह्य होता। बोलते भाई हम तो शैव है, हम क्यों इसको माने। यदि आप वैष्णव का प्रयोग करते शैव नहीं मानते, इसलिए आचार्य ने समाधि निष्ठत्व शब्द का प्रयोग किया कि जहां पर आपका चित्त बढ़िया से शांत हो जाए, चाहे माता के चरणों में, गुरु के चरणों में, भगवत चरणों में, गौ माता के चरणों में, या गंगा भक्ति हो, वहां निष्ठा यदि आपकी ठीक से जम गई, ऐसी निष्ठा जमनी चाहिए कि संसार का कैसा भी झंझावात आए, झंझावात बोलते तूफाना, तूफान, हवा, आंधी, उससे आपका चित्त हिलना डुलना नहीं चाहिए। ऐसी यदि परमात्मा प्रीति हो जाए, निष्ठा हो जाए, तो आप जीते जी अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। वह आदमी जहां पर होता वहां पर स्वयं स्वर्ग उतर आता है। जागृति को वा, इस संसार में जागृता कौन है? तो आचार्य ने उत्तर दिया सत असत विवेकी। जिसने सत तत्व का और असत का ठीक से विचार कर लिया, बिना असत के जाने असत का परिहार नहीं हो सकता। इसलिए सत असत दोनों पदार्थों को जानना अनिवार्य है। जब आप असत या जो जगत, असत शब्द का अर्थ है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, इसको असत बोलते हैं। अस्तिति धी विषयो निरुपाख्या असत, जो मात्र शब्दों से प्रतीत हो पर वस्तु शून्य हो उसका नाम असत है। मिथ्या में एक आधार होता है, उस पर एक चीज आरोपित होती है, उसको मिथ्या बोलते। दोनों को अलग अलग समझ लेना आप। मिथ्या मतलब कि रस्सी नाम की कोई चीज एक आधारभूत मौजूद है, उसके ऊपर दूसरी चीज की कल्पना आरोप करना मिथ्या है। अन्यथा कारेण भासमानता को मिथ्या बोलते हैं। जैसे रस्सी में सर्पाकार की प्रतीति मिथ्या है, पर असत अलग है। असत माने शब्द से वस्तु का ज्ञान तो होगा, प्रतीति होगी, पर वस्तु शून्य। जिस प्रकार आप कहते हैं आकाश का फूल बंध्या का पुत्र बड़ा ही सुंदर अपने सर में धारण करके और सस्त्रिंग का धनुष बाण लेकर आ रहा है, शब्दों से ज्ञान तो हो गया कि आकाश कुसुम बंध्या पुत्र ससे का धनुष बाण बनाकर इस आयाती बंध्या पुत्र आ रहा है। तो शब्दों से ज्ञान हो जाएगा, प्रतीति होगी, पर वस्तु शून्य, वस्तु नहीं होता, इसका नाम असत है। तो आचार्य यहां पर अनात्मा के लिए असत शब्द का प्रयोग कर रहे। ये जगत वास्तव में असत है। असत मतलब कि शब्दों से केवल प्रतीति हो रही है, और जहां पर शब्दों से प्रतीति हो रही वहां पर उपलब्धि है नहीं। जैसे आप प्रातः काल स्वाध्याय में श्रवण किया करते हैं संवादी विसंवादी, तो विसंवादी भ्रांति का दृष्टांत दिया कि दीपक के प्रभाव में मणि की बुद्धि, किसी मंदिर के झरोखे में दीपक जल रहा और आप बाहर से दीपक की रोशनी में मणि की बुद्धि कर लिए, जब आप दौड़ कर जाएंगे तो मणि नहीं मिलेगी, सिर्फ दीपक मिलेगा। वह दीपक भी जब तक तेल बाती तभी तक जलेगा, बाद में बुझ जाएगा। ऐसे ही संसार की प्रवृत्ति है। संसार में आप कितना भी कारोबार व्यापार व्यवसाय कर लो, पर जैसे प्रारब्ध कर्म रूपी तेल समाप्त हो जाएगा, दीपक बुझ जाएगा, बोलेंगे शरीर शांत हो गया, परंतु यह जो दीपक की ज्योति बाहर है और आपकी आत्म ज्योति अंदर है, दोनों मंत्र इतना ही। जो आत्म ज्योति जिसको चिंतामणि बोलते हैं आपके हृदय में है, जिसको आप पढ़ा करते हैं स्तोत्र में, आदाय हृत कमल मध्यगतम परेशम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जो आपका हृदय कमल है, उस हृदय कमल में वह चिंतामणि आत्म ज्योति जल रही, परोशनी इंद्रियों के द्वारा बाहर छिटक रहा। इसलिए उपनिषद में कहा आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। यदि आपको अमृत चाहिए, अमृत मतलब मौत से छुटकारा पाना, आप मरना नहीं चाहते हैं, प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि हे भगवान बड़ी कृपा होगी मैं मरू नहीं। आप मरना नहीं चाहते हैं, अमर होना चाहते, तो बता दिया कि आवृत चक्षु। चक्षु शब्द सारे इंद्रियों का उपलक्षक है। उपलक्षक बोलते हैं स्वबोध जनकत्व सति श्वेतर बोध जनकत्वम, उपलक्षक होता है। अपना बोध कराता हुआ अपने से इतर का बोध कराए, उसका नाम होता उपलक्षक। तो चक्षु शब्द सारे इंद्रियों का उपलक्षक है, बोधक। तो सारे इंद्रियों को बस में करके, इसी को आचार्य बोलते हैं कि शत्रु, शत्रु कौन है, तो निज इंद्रियाणी। जो आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं, यही इंद्रियां आपकी शत्रु है। क्योंकि संसार में आत्मधन आत्म ज्योति से बड़ी कोई ज्योति नहीं। पर हमारी इंद्रियां जो हमारे बस में नहीं होती हैं, तो संसार के जो चमक दमक है, जो बिल्कुल दीपक के ज्योति से अधिक नहीं, तो संसार की ज्योति की तरफ इंद्रियां हमारी भागती रहती हैं। यही हमारी इंद्रियां शत्रु है। जब आप अपनी इंद्रियों को शास्त्र आगम आचार्य के अनुसार बस में करके, जैसे आप नन्हे मुन्ने लाडले प्यारे पुत्र को बड़े प्यार से समझाते हैं, बेटा खिलना कूदना समय से चाहिए, थोड़ा पढ़ने मन लगाओगे, पढ़ोगे तो बहुत बड़े तुम विद्वान बन जाओगे, ज्ञानी बनोगे, तुम्हारे लोग पूजा करेंगे, तो धीरे धीरे पहले उसको मिठाई का प्रलोभन देते हैं, फिर खिलौनों का, जब नहीं मानता है तो चपेता भी देना पड़ता है ना। ऐसे हमारा मन है, मन बड़ा ही सबके लिए प्यारा है, मन को आप मन की बात बहुत मानते हैं, यदि आप मन को पहले तो खिलौनों और मिठाई के समय प्रलोभन देना के देख भजन ध्यान चिंतन करेगा तो सदगति होगी, आनंद आएगा, स्वर्ग मिलेगा। इस स्वर्ग का प्रलोभन भी बच्चे के ये प्रलोभन के समान है। इसको बोलते गूढ़ जीविका न्याय। किसी बच्चे को कड़वी दवा पिलानी होती है तो उसको पहले दवा के ऊपर गुड़ का लेप कर देते हैं, कह देख बेटा चाट चक के देख, जैसे बच्चा चकता है तो मीठा लगता है, कहता हा मीठा है। तो गुड़ खिलाने में तात्पर्य नहीं, अंदर तो कड़वी दवा है, कि कड़वी दवा ही फायदा करेगी, बीमारी दूर करेगी, तो प्रारंभ में उसे जरा गुड़ का मिठास का स्वाद चखाते हैं। ऐसे शास्त्रों में आपको बताया कि भाई तुम जप करोगे, अनुष्ठान करोगे, ध्यान चिंतन करोगे तो सारी कामना सिद्ध हो जाएगी, ये सब कुछ मिल जाएगा। ये सब गुड़ जीविका के समान है। जब आप लग जाते तो महसूस होता है कि संसार तो अनित्य है, स्वर्ग भी छिष्णु है, तो हमारी इंद्रियां हमारे बस में होंगी तो वह इंद्रियां क्या करेंगी, आवृत चक्षु, सारे इंद्रियों को बस में करके जब आप अपने हृदय में देखो, बाहर की दीप की ज्योति तो सारे इंद्रियों से दिखाई पड़ रही, प्रतीत हो रहा, आंख से दिखाई दे रहा रूप, कान से शब्दों को सुन रहे, पैर से चलने का आनंद आ रहा, हाथ से देने लेने का आनंद आ रहा, लोग मना कर रहे कि आपका पैर कांप रहा, हाथ हिला, चाबी रख दो, पर हम कहां मानते हैं, क्योंकि तो उस चाबी को खोलने में बंद करने बड़ा रस आनंद आता है, क्योंकि उससे महसूस होता है कि मैं घर का मालिक हूं, स्वामी हूं। तो ये जो इंद्रियां हैं बाहर के विषय की ज्योति तो आपको अनुभव में आ रहा, परंतु जो अंदर चिंतामणि है, जो हृदय में कमल के ऊपर जो आत्म ज्योति है, वो आत्म ज्योति बाहर के इंद्रियों का विषय नहीं, उसके लिए तो शास्त्र पर विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्र प्रत्यक्ष है, भले ही ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष न हो, ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष तो दीप ज्योति होती है, संसार के विषय पदार्थ होते हैं, परंतु जो आत्म ज्योति है वो शास्त्र प्रत्यक्ष है। जब आप शास्त्रों की बात पर विश्वास करके इंद्रियों को बस में करके, पहले तो उसको प्यार से बस में करना, समझाना बुझाना, जब नहीं माने तो संयम के कोड़े लगाना, संयम जानते हैं ना, जबरन भाई उठना ही 4 बजे है, चाहे कुछ भी हो जाए प्रेम पूरी आना ही है, नहीं आए तो क्या करना, दंड देना, कैसा दंड, कि नहीं तो प्रेम पूरी आएगा तो भोजन नहीं मिलेगा, अपने आप मन ठिकाने लग जाएगा। हम लोग जब कैलाश में थे तो सच्ची बात है, ठीक 5 बजे घंटी बजती है आरती की, तो कदाचित भूल हो जाए तो हम लोग भोजन नहीं करते थे, आज भोजन नहीं करना क्योंकि हम आरती में नहीं गए, तो दूसरे दिन मन को होता था कि भाई आज नहीं जाएगा तो फिर भोजन नहीं मिलेगा। तो एक बार दो बार अपने आप दंड देंगे मन को तो याद रहेगा। इसको बोलते संयम के कोड़े, यही इंद्रियां आपके मित्र बन जाएंगी। मित्र बनने के बाद उस आत्म ज्योति का अनुभव होने लगता है। तो जागृति को वा जागता कौन, जो सत असत का विवेचन करने में सक्षम है। पर आप अपने आप विवेचन नहीं कर सकते सत क्या असत क्या, इसको शास्त्र के द्वारा करना पड़ेगा। हमारी इंद्रियां तो कहती है कि संसार दिखाई दे रहा यह सत्य है, वास्तव में संसार में सत्यत बुद्धि न हो तो किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी। भर्तृहरि लिखते हैं अपने अनुभव में, राजपाट त्याग करके भर्तृहरि महाराज जंगल में तपश्चर्या कर रहे थे। रात्रि में चांदनी के ज्योत्सना में भ्रमण कर रहे थे, माला घुमा रहे थे, एक शिला के ऊपर कुछ चमक रहा था। तो कई बार मन को समझाया कि राजपाट सब त्याग दिया, क्या करना अपने, कुछ होगा तो रहने दो। मन कहता नहीं, लगता है कि सोना चमक रहा है या चांदी चमक रही होगी। मन में एक कल्पना हो सकता है कोई हीरा चमक रहा हो। 10-20 बार घूमते रहे, फिर मन में आया कि देख तो लो पहले, क्या पता कोई अमूल्य मणि चमक रही हो, जंगल है कुछ भी हो सकता। फिर कल्पना किए कि हमने सुना है कि जंगल में मणिधर सांप रहते हैं, तो हो सकता है कोई मणिधर सांप जो है ना अपना मणि उगला होगा, जरा हम देख लें। जैसे ही बेचारे हाथ लगाए वैसे ही आत्मग्लानी से भर गए। वो क्या था पता आपको, वह था किसी व्यक्ति का कफ, पत्थर पर कोई कफ थोक दिया था तो चंद्रमा के चांदनी में वो चमक रहा था। तो लगा कि ये कोई मणि की जो ज्योति है या कोई जो है सोना चांदी भूल गया है। तब पश्चाताप किए, देखो सब कुछ छोड़ा राजपाट, पर जरा सी चमक के पीछे हाथ बढ़ाया, हाथ शुद्ध। इसी को बोलते हैं ना समझी। तो हम लोग भी यही भूल करते हैं। हम लोग भी क्या भूल करते हैं कि संसार के चमक के पीछे भागते हैं, और दुनिया वाले भी उपदेश करते हैं, अरे बुढ़ापे में राम राम कर लेना ना, अभी तो जवानी है, अभी तो घूमने का फिरने का कमाने का समय है। बोलते कि नहीं बताओ ईमानदारी, साहब बोलते हैं बाबू जी, बोलते कि नहीं, साहब बोलते, बहुत लोग बोलते। मैं साधु बनने लगा कैलाश में तो बोले अरे अभी साधु बनने की उम्र नहीं, अभी पढ़ लिख कर अच्छी बुद्धि है। एक हमारे साथी तो बोले अच्छा विद्वान बनोगे, अच्छा पंडित बनना क्या रखा है साधु में, ये तो जिसके कोई माता पिता नहीं होते उसको बनना चाहिए जवानी में। तो दुनिया वाले आपको उपदेश करते कि भाई ये बुढ़ापे की काम है भजन ध्यान चिंतन सत्संग, सो ऐसी बात नहीं। सबसे कठिन काम भगवान की भक्ति। एक सच्ची घटना है, बंगाल के प्रोफेसर नाम था स्वपन चेतन, तो आए थे कैलाश में ज्ञान यज्ञ में। उन्होंने देखा बहुत सुंदर व्यवस्था महात्माओं की, प्रत्येक महात्मा का अलग कमरा अलग व्यवस्था सब ठाट बाट। तो महाराज से बोले विद्यानगरी जी महाराज से कि महाराज मैं भी चाहता हूं कि साधु बन जाऊं। महाराज ने पूछा उम्र क्या, बोले 55 हो गई, एक साल में रिटायर होने वाला हूं। तो बोले अच्छी बात है, रिटायर होके तब आना। बोले महाराज ऐसा है संन्यास दे दो, शिवरात्रि भी आ रही 4 दिन के बाद, और जाके सब करके आ जाऊंगा। पहले समझाए हम लोग भी कि भाई पहले तू अनुभव कर ले संन्यास कैसा हो। तो बोले नहीं नहीं मैं सब देख लिया 1 महीना से ज्ञान यज्ञ में। बेचारे तुरंत संन्यास ले लिए, 2 महीने के बाद कान पकड़ ली। बोले महाराज बड़ा कठिन है। मैं बोला क्यों, सबसे पहले तो घंटी तंग करती है, दिन भर घंटी बजती है, उठो 4 बजे, फिर 5 बजे घंटी लगती आरती में जाओ, फिर 6:30 बजे स्वाध्याय में जाओ, फिर 9:30 बजे पारायण में जाओ, फिर शाम को महिमन। बोलिए तो बहुत कठिन काम। बढ़िया है घर गृहस्थी में राम राम हो जाएगा, फिर वापस हो गए वो। तो देखो लगता है कि बड़ा ठाट वाट महात्माओं के है ना, जब रहेंगे तो मालूम पड़ेगा, बहुत तपश्चर्या करनी पड़ती। तो भक्ति करना बहुत बड़े बिरले का काम है, पर दुनिया वाले और हमारा मन क्या करता है, ये तो कभी भी हो जाएगा, इसमें जल्दी क्या है, अभी जल्दी की जरूरत नहीं है, इसी का नाम प्रमाद है। वो कहते एक बहुत अच्छी बहू समझदार थी, पढ़ी लिखी सात्विक धार्मिक परिवार से घर में आई थी, अपने पति को समझाती अम्बा को कि अम्बा सत्संग में जाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जीवन क्षणिक है। पति बोलते देख अभी मैं मरने वाला नहीं, अभी हमारी उम्र 40 हो रही, जीना है 100 वर्ष तक, 60 बाकी है। वो कहती कोई बात नहीं आज एकादशी आज चलो। बोले एकादशी से क्या लेना देना। वो समझाती आज पूर्णिमा है, आज जो है ना सोमवार है, आज तो चलो सत्संग में। वो बोलता तू चली जा, अपने को अभी जल्दी नहीं है। बहू ने कहा कैसे समझाऊं, सीधा बोल नहीं सकती। एक दिन श्रीमान जी बीमार पड़ गए, बोले देवी जरा फला डॉक्टर से दवा लेकर आओ। तो अच्छा अभी लाती हूं। 2 घंटा हो गया, बोला दवा लाई, बोला अभी जल्दी क्या है, थोड़ा बच्चों को स्कूल भेज दो फिर लाऊंगी। चुप बैठ गया, पढ़ा लिखा समझदार था। जब दिन के 12-1 बजे बोले दवा लाई, बोली अभी भोजन पानी बना लूं सब कर लूं फिर लाऊंगे, जल्दी क्या अभी है, बहुत सारे काम पड़े हैं। वो सोचा कोई है नहीं, बिगड़ूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। जब शाम हो गए 4 तो उसका पारा चढ़ गया, बोला क्या मैं मर जाऊंगा तब तू लाएगी। बोली श्रीमान जी आप तो मरने वाले हैं नहीं, आप तो बोलते कि मैं 100 बार जीऊंगा, तो दवाई तो कभी भी आ सकती है। तब विवेक जगह, बोले हाँ तो बात सही बोल रही है, ये हमारा प्रमाद है। क्षणार्धम न जानामी विधाता किम करिष्यति, विधाता क्या करेंगे एक पल का भरोसा नहीं। पर मनुष्य यह जो प्रमाद है कि अभी जल्दी क्या है, इसी का नाम प्रमाद है। युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछते हैं कि बताओ महाराज मौत किसे कहते, मौत की परिभाषा क्या, लक्षण क्या। सांप का प्रमादम वे मृत्यु, प्रमाद का नाम ही मौत है। प्रमाद मतलब अवश्यम भावनी कार्य, अद्य स्वो परस्वो करिष्यामी इति प्रमाद। आचार्य ने प्रमाद शब्द की व्युत्पत्ति करी कि अवश्यम भाविनी कार्य, बहुत जरूरी कार्य के प्राप्त होने पर, अद्य आज स्वो कल परसो परसो करूंगा, इसी विचार का नाम प्रमाद है, इसी का नाम मौत। रावण सोचता था कि लंका से लेकर स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बना दूंगा। जब लक्ष्मण जी गए पूछे कि बताओ इतने बड़े आप ज्ञानी, इतने बड़े शास्त्रज्ञ वेदज्ञ, आपने ऐसा कौन सा काम जो कर नहीं पाए, तब रावण ने कहा कि मैं सोचता था कि श्रीलंका से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बना दूंगा, परंतु प्रमाद से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, बाद में कर लूंगा, है ना, बढ़िया बंगला बन जाए फिर भजन करेंगे, घर में बहू आ जाए फिर भजन करेंगे। बहू आने के बाद क्या होता है, जरा बहू अकेले, पोता हो जाए फिर तो कोई चिंता नहीं, पोता आ गया फिर क्या कहते हैं, अभी छोटा है ना, खिलाना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो जाए। ऐसा प्रमाद करते करते बिना बुलाए बुढ़ापा आ जाती है, बुढ़ापा को निमंत्रण ही देना पड़ता है। आपने हम भी सोचता हूं कभी कभी कभी, दूसरे की बात छोड़ो, कि हम सोचते थे बचपन से, 11 वर्ष की उम्र से हमको याद है, क्या सोचता था मालूम? आप हंसेंगे सुनकर, कि हिमालय जाएंगे, ऐसा तपस्या करेंगे आकाश में उड़ जाएंगे। हाँ, ये सोचता था बचपन से, ऐसी सिद्धि प्राप्त करेंगे कि बस छू मंत्र। परंतु सोचते सोचते जवानी बीतने आ रही, ये जो सोच है ना कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा हो जाएगा, इसी का नाम प्रमाद। और प्रमादम में मृत्यु, प्रमाद को मौत की संज्ञा शास्त्रकारों ने दिया है। तो प्रमाद कभी स्वाध्याय सत्संग से नहीं करना, जहां प्रमाद करना वहां तो बिल्कुल सजग रहते, और दुनिया वाले भी आपको सजग कर देते हैं। प्रमाद करना चाहिए संसार के कार्य से, बर्ताव से, व्यवहार से, प्रमाद बिल्कुल सावधान। जुकाम 10 वर्ष बाद होना, वो आज ही होना चाहिए, होता है कि नहीं ऐसा? तो प्रमाद करना है तो संसार से करे, स्वाध्याय सत्संग आत्म विचार से प्रमाद नहीं करना चाहिए, वही लिख रहे। तो सत असत का जो विवेकी है वह प्रमाद नहीं करता, जागृति वह जग जाता है। कहां जगता है? शास्त्रों में। गीता में भगवान ने कही है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अज्ञानियों के लिए ये आत्मज्ञान, वेदांत शास्त्र का विचार निशा के समान। निशा मतलब क्या बोल, समझ में नहीं आता है, क्या बोल रहे, माया ब्रह्म जी कुटस्थ बोलते कि नहीं बोलते, ऊपर ऊपर चला जाता है। तो अज्ञानियों के लिए पारमार्थिक आत्मा निशा के समान, तस्याम जागृत संयमी, उसी आत्मक विचार में विवेकी जागृता है, सावधान रहता है। यस्याम जागृति भूतानी भूत प्राणी, जिस संसार के व्यवहार में, व्यापार कारोबार में बिल्कुल जागते हैं, सावधान रहते हैं। अब बंबई में तो 12-2 बजे तक जागते हैं ना, वह ज्ञानी के लिए निशा के समान है। ज्ञानी क्या समझता है कि चाहे कुछ भी कर लो एक दिन यह छिन जाएगा, इसलिए इसके पीछे नहीं पड़ता है। कि शत्रु व शत्रु कौन, निजेन्द्रियाणी, हमने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया, अति शत्रु के समान बर्ताव करती है। तान्य मित्राणी, मित्र कौन, वही इंद्रियां, जिन इंद्रियों को आपने वश में कर लिया, चाहे प्यार से किया या जो है ना फटकार से, वही इंद्रियां आपके लिए मित्र है, क्योंकि आत्मक ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाती है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा सीमा चकोयस्य विषमस्त तोष। संसार में दरिद्र कौन है, सबसे दरिद्र किसे कहना चाहिए? यही सवाल गार्गी ने याज्ञवल्क जी से किया। पुराने जमाने में ज्यादा माताएं बहने वेदांती हुआ करती थी, अब तो कम। देखो गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, बहुतों का नाम, ऋचा, वेद में नाम आता। सुलभा के विषय में आता है, बहुत बड़ी आत्मज्ञानी अवधूतानी थी सुलभा, इतनी बड़ी ज्ञानी। तो गार्गी ने पूछा, क्या गलत जाप, ये बताओ संसार में सबसे बड़ा कृपण दरिद्र कौन है? क्या उत्तर दिया पता ना आप लोगों को? यो वा एतद अक्षरम अभिदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति सवै कृपण। कहे गार्गी, जिस संसार में नर्तन चोला प्राप्त करके उस आत्मा को बिना जाने ही यात्रा करता है, वह महा दरिद्र महाकृपण है। आपने अपने बेटे को 5 लाख दिया, कि बेटा व्यापार करना, और 25 लाख का कर्जा कर दिया तो क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे बेकार है, इसकी अकल में मिट्टी बैठी, बोलेंगे ना? बोलेंगे आपने 5 दिया तो कम से कम तो 5 का 5 करे तो भी चलो ठीक है, कुछ हानि नहीं। वो 5 लाख दिया व्यापार खोला और 25 लाख का उधार, घाटा हो गया। बोलेंगे बैठ चल, तेरे बस की बात नहीं व्यापार, ऐसा कर तो बैठ के दरवाजे पर राम राम किया कर, बोलना पड़ेगा ना? बिल्कुल वही बात हमारी। परमात्मा ने आपके प्रार्थना से बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर दिया कि तुम बढ़िया व्यापार करो। सबसे बड़ा व्यापार है आत्मधन की प्राप्ति, जो आत्मवित्त है उससे बड़ा कोई धन हो नहीं सकता। अक्षर अविनाशी परमात्मा को बिना जाने यहां से प्रयाण कर तो महागरीब है, महा दरिद्र है, पर आप इतने सुंदर शरीर को प्राप्त करके भी व्यापार क्या करते हैं? आंख से रूप का व्यापार। भाई आंख रूप को देखती है, कहती बहुत अच्छा है, फिर क्या बोलती? बहुत बुरा है, बोलती कि नहीं? तो आंख से रूप का व्यापार, कान से शब्दों का व्यापार, पैसे गमनागमन का व्यापार, हाथ से देन लेन का व्यापार, मन से चिंतन का व्यापार, यह जो व्यापार है यह व्यापार अनित्य है। इन इंद्रियों से चाहे कितना भी आप बढ़िया से बढ़िया व्यापार कर लो, जबान से चाहे कितनी बढ़िया चिकनी चुपड़ी व्यापार कर लो, अंत में सब धोखा देंगे। जब आप बिस्तर पर जाएंगे बोलेंगे बस बोला पड़े रहो, हमारे पास फुर्सत नहीं, आपसे लोग बात भी करना नहीं चाहते हैं। होता है कि नहीं? कोई नहीं चाहता, बोले समय नहीं, टाइम नहीं। तो देखो सबसे बड़ा व्यापार है कि आप अपने इंद्रियों से मन से अक्षर अविनाशी आत्मा को जान लेना। इसलिए कहा कि हे गार्गी, विश्व नर्तन चोला को प्राप्त करके आत्मा को बिना जाने ही संसार से छोड़कर जाता, वो महाकृपण है। वही बात यहां बता रहे कि दरिद्र कौन है जिसमें विशाल तृष्णा है, वो क्या चाहता है कि संसार का सबसे बड़ा मैं धनाढ्य अमीर व्यक्ति बन जाऊं। उसे पता नहीं है कि चाहे तू कितना बड़ा भारी आदमी क्यों न बन जाए, एक तिनका भी यहां से लेकर जा नहीं सकता, बल्कि कफन भी शमशान के आगे नहीं जाएगा, शमशान में सब कुछ भस्म सात हो जाना। तो वही सबसे बड़ा दरिद्र है। रेगिस्तान में एक आदमी बहुत प्यासा भटक गया, भटकते भटकते बहुत दूर गया, जोर से तृष्णा, प्यास की तृष्णा लगी रही। घूमते घूमते संध्या होने जा रही थी, एक कुआं मिला। उसने देखा कुआं तो बहुत गहरा, उसके पास सिर में बंधे हुए कपड़े थे, कपड़ा खोला, उनको फाड़ा, रस्सी बनाया, अपनी छोटी सी बाल्टी में एक छोर को बांध दिया और दूसरे छोर को कसकर दाहिने हाथ में पकड़ लिया और बाएं हाथ से बाल्टी और उस रस्सी को पूरी ताकत लगा के जल में फेंका। बाल्टी डूब गई, पानी खींच के प्यास बुझा लिया। पर यदि वह आदमी दोनों छोर को फेंकता तो क्या होता? बाल्टी जाती, रस्सी जाता, प्यासे मरता। हम वही भूल करते हैं। गहरे कुएं से पानी दिखाई दे रहा, निकालना भी चाहते, निकालते भी, पर बुद्धिमानी नहीं करते। क्या करते मालूम? दोनों हाथ से दोनों छोर को जोर से फेंक देते कुएं में, फिर तमाशा देखते, अरे भाई बाल्टी भी डूब गई, रस्सी दिख रहा, लाओ दूसरा कोई साधन, जरा किस तरह से बाल्टी निकाले तो बाल्टी आ जाएगी, रस्सी आ जाएगा, फिर प्यास बुझ जाएगी। ये भूल है कि नहीं? तो आपको एक छोर तो बिल्कुल पकड़ के रखना। एक छोर कौन? पारमार्थिक आत्मा। इस सत्संग स्वाध्याय ये आपके जीवन का अंतिम छोर है, उसको दाहिने हाथ से पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं। और दूसरा छोर है संसार। दूसरा क्या है? संसार। तो आप स्वाध्याय प्रवचन के छोर को कसके पकड़ के रखेंगे तो एक न एक दिन आपकी सारी तृष्णा जो प्यास है समाप्त हो जाएगी। पर आदमी जल्दबाजी में भूल जाता है, मतलब कि सब कुछ झोंक देता है संसार को पाने के लिए, अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगता, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। अब पूछा कि भाई श्रीमान चको, श्रीमान कौन है, धनाढ्य कौन है, जिसको आप बोलते हैं ना सबसे बड़ा अमीर कौन? बिल गेट्स नहीं बोलना, उससे नहीं काम चलने वाला है। हाँ, फिर भी उनका नाम बच्चे बच्चे जानते हैं। क्यों जानते हैं पता आपको? उन्होंने अब सुना मैंने सारी संपत्ति सत्कार में दान दे दिया, इसलिए उनका नाम आज की तारीख में सभी बच्चे बच्चे जानते। आपने नाम सुना होगा हरिश्चंद्र महाराज का, सत्युग की घटना है। हरिश्चंद्र महाराज रात को सपना देख रहे थे, सपना हिसाब देखते। सपने में क्या देखते हैं? एक बाबा जी आए और सामने बैठे, उनका लाओ भिक्षा, भिक्षाम देही। उन्होंने हाथ में जल लिया, संकल्प पढ़ा, सर्वम ददाम्य हम, सब कुछ दे रहा हूं। सपने में दान दे दिए। प्रातः काल होते वही बाबा जी आ गए। बाबा जी कौन थे पता है ना? विश्वामित्र जी थे। विश्वामित्र ने कहा तुम्हें याद है? बोले हां मरा याद है। फिर विलंब किस बात की? तो सपने में दान दिया, जागृत में नहीं। आप होते तो क्या बोलते? बोले महाराज तो सपना था, जागृत थोड़। और तुरंत सारी पृथ्वी का दान कर दिया। विश्वामित्र भी कम नहीं, कड़ी परीक्षा लिया। बोले अच्छा दान तो दे दिया पृथ्वी का, अब दक्षिणा दे। बोले अच्छा अभी कोष से ला कर दे। तो बोले कोष मेरा हो गया, जब तुमने सब कुछ दान दे दिया तो राजकोष पर मेरा अधिकार, अपने राज से बाहर जो है उसका दक्षिणा देना पड़ेगा। बोले महाराज थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। सत हरिश्चंद्र महाराज ने अपने को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र रोहित को भी बेच दिया और कहा आपकी 1.25 लाख दक्षिणा। कितनी कड़ी परीक्षा, इतना है नहीं आगे भी परीक्षा लिया कि सत्य से हिलता है कि नहीं। वह जो रोहित था उसे किसी सांप ने डस लिया। मां जो सभ्या थी, जहां काम करती थी, वहां उस आदमी ने कहा टाइम नहीं तो अभी ये सारा काम कर। उसने कहा कि जरा पुत्र का संस्कार कर लो। संस्कार करने गई शमशान में तो वहां जो डोम था उसने कहा लाओ कुछ चाहिए, ऐसे संस्कार नहीं कर सकती, आदि साड़ी फाड़ कर दिया। वही थे सत हरिश्चंद्र जो वहां पर डोम बने हुए थे। देखा कि पुत्र पत्नी उनका हृदय उस समय अत्यंत विह्वल हो गया। तत्काल कहते सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र हमने तेरी बहुत कड़ी परीक्षा लिया, तू महान है श्रीमान है, जब तक सूर्य चांद रहेंगे तब तक तेरा नाम अमर रहेगा। हां सत्यवादी हरिश्चंद्र, उन्होंने अपने वचन का कितना पालन किया कि भाई हमें जो वचन दिया पूरा करना है। तो जीवन में त्याग होगा तो त्यागेन अमृतत्वम आनसु, अमृतत्व की प्राप्ति। आज भी सत्य हरिश्चंद्र सबके हृदय में अमर है। ऐसे यदि हमारे जीवन में सत्य उतर आए तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाता है। तो श्रीमान कौन है? जो बहुत सारी संपत्ति संचित करता उसको श्रीमान नहीं कहते, उसको बोलते कृपण, दरिद्र। सारा ढेर संपत्ति है और कोई बोला लाओ जरा मुझे भिक्षा कराओ, बोला महाराज आगे बढ़ो, बोले कौन टंटा पाले, उसको श्रीमान नहीं बोलेंगे। श्रीमान बोलेंगे जिसका चित्त महान हो, उदार हो, समस्त तोषः, जिसके मन मस्तिष्क में संतोष का खजाना, चाहे वह भले ही भूत भौतिक दृष्टि से गरीब दिखता हो पर मन में संतोष हो कि भगवान की बड़ी कृपा, बहुत मेहरबानी, सब ठीक ठाक है। योग दर्शनकार ने कहा, पतंजलि भगवान ने, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से बड़ा कोई उत्तम सुख नहीं, लाभ नहीं। तो संतोष धन आ गया तो आप श्रीमान हो गए, संसार का सारा खजाना आ गया पर संतोष नहीं कि इदम में सात और भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा हो जाए, तो वह जो है ना श्रीमान ही कहलाएगा। जीवन मृता कस्तु, जीते जी मरा हुआ कौन आदमी, जीते जी मरा कौन है? तो कहा निरुद्यमो यह, जो पुरुषार्थहीन है वह आदमी जीते जीते मरे के समान। पुरुषार्थ बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रयास, और परम पुरुषार्थ है मोक्ष। परम पुरुषार्थ बोलते मोक्ष को। तो भगवान ने सुंदर शरीर दिया तो हमारा काम है परम मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना। एक कहते राजा था, कोई संतान नहीं थी। राजा ने घोषणा किया, भाई मैं बूढ़ा होने जा रहा हूं, कोई आगे आओ, मैं आप में से किसी को राजा बनाऊं। 1000 जवान युवक सामने आ गए। मंत्रिमंडल से विचार किया कि भाई गद्दी तो एक को देनी है और हमारे सामने 1000 आवेदक हैं, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो राजा ने विचार किया, बोला ऐसा करते हैं, किसी को बुढ़ापे में नाखुश करना ठीक बात नहीं। घोषणा किया, कल आओ सबको, कल राजा बनाएंगे। सब आए दूसरे दिन, बड़े खुश। सबने सोचा कि शायद राजा अपने राज्य के रियासत को टुकड़ा कर कर सबको राजा बनाएगा। राजा ने कहा कि एक शर्त है, 1 वर्ष के लिए सबको राजा बनाऊंगा, और जैसे ही 12वां महीना बीतेगा, कान पकड़ के सेनापति और महामंत्री नदी के उस पार भेज देंगे, हमारे प्यारे जंगली जानवरों के भोजन बन जाएगा। सबने कहा महाराज बस आवेदन वापस, हम राजा नहीं बनने वाले। 1 वर्ष तो चुटकी भर में निकल जाता, 999 आवेदन वापस, 1 आदमी बुद्धिमान था वापस नहीं लिया। राजा ने कहा तुझे मौत से भय नहीं? बोला महाराज भय तो है पर क्या करूं, मजबूरी। इतने में पत्नी बच्चे आ गए, बोले चल आराम से बैठ, हम सारा काम करेंगे, तुझे घर का राजा बनाते हैं। राजा ने कहा देखो भाई तुम्हारी पत्नी बच्चे रो रहे, घर जाओ। बोला महाराज ये हमारे आपस की बात है, आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। समझाया पत्नी को, क्यों चिंता करती है, दिन भर काम करते करते तो ऐसे मर रहा हूं, अरे बढ़िया से 1 साल तो राजा बन के मरूंगा तो कुश्ती इतिहास में नाम होगा। उसने कान में मंत्र दिया, कहा देख राजा बनते ही सबसे पहले 13 महल सोने का बनवा दूंगा, 100 पीढ़ी तक आराम से तू जो है ना बैठकर खाना। वो कही बढ़िया है चलो, पत्नी बच्चे चले गए। राजा ने पूछा भाई क्या तुमने मंत्र दिया? उस आदमी ने कहा कि आपस की बात है, आपको बताने की चीज नहीं। कहा अच्छी बात है, बना दिया राजा। राजा बनने के बाद उस आदमी ने पूछा, बताओ हमारे कितने अधिकार। सबने कहा 12 महीने तक तो सारा अधिकार, हम आपके आज्ञाकारी। पर याद रहे 12वां महीना आते ही कान पकड़ के दाहिना कान सेनापति बायां मंत्री महोदय नदी कुछ पार भेज देंगे और प्यारे जंगली जानवरों के भोजन भंडारा हो जाएगा आपका। बोला तैयार हूं मैं, राज्याभिषेक हो गया। उसने पूछा बताओ कितनी सेनाएं। मंत्री ने कहा 1,00,000 सेना हमारे पास है। उस नए राजा ने कहा ऐसा है, आधी सेना तो लगाओ सुरक्षा में और आधी सेना आज से ही नदी के उस पार तक फोर लाइन राजमार्ग बन जाना चाहिए रातों दिन। सबने कहा महाराज क्या जरूरी है, कोई उपयोग नहीं। उसने कहा मैं राजा हूं ना, मेरी आज्ञा। 4 महीने के अंदर बन के तैयार होना चाहिए, 4 महीने के अंदर राजमार्ग बन के तैयार। उसने पूछा बताओ कितने दिन बचे। सबने कहा बस 8 महीने रह गए। कहा ठीक है, अब आगे के 2 महीने में सुंदर राजभवन बन के तैयार हो जाना चाहिए उस पार। मंत्री ने कहा महाराज उसमें कौन रहेगा, यही कोई रह नहीं पा रहा है, सब तो आपका ही। उसने कहा देखो मैं राजा हूं ना, हमारी आज्ञा। सबने कहा जो आज्ञा महाराज। अब 2 महीने में नदी के उस पार बड़ा सुंदर राजभवन बन के तैयार। उसने कहा कि ऐसा है, तीसरी आज्ञा, अब जो है ना आगे के 4 महीने में सुंदर व्यवस्था कर दो, बाग बगीचे गौशाला आदि यज्ञ प्रारंभ हो जाए, सब बन के तैयार। पूछा बताओ कितने महीने बचे। सबने कहा 2 महीने। का अच्छी बात है, 2 महीने के बाद क्या होगा, सब खुश। बोले बस कान पकड़ के जब तुम जाओगे ना हम होली मनाएंगे। सब खुश थे, बड़ा तंग किया इसने। जैसे जो नासमझ लोग हैं ना, नासमझ जिनको भविष्य दृष्टि नहीं, वो नासमझ लोग क्या बोलते हैं कि मोदी साहब ने क्या जीएसटी लगाया और नोटबंदी लगाया, क्या क्या कर दिया, बड़ी तंगी बड़ी परेशानी बड़ी मुसीबत खड़ा कर दिया, नासमझ बोलते, क्योंकि भविष्य का ज्ञान नहीं। जैसे लोग बोले क्या परेशान किया ये 10 महीने में सबको। अच्छी बात है, तुम लोग जो है ना 2 महीने के बाद कान पकड़ के उस पार भेजोगे। ये मेरा इस्तीफा, मैं स्वयं चल के जा रहा हूं। वृद्ध राजा ने कहा महाराज चाहे आप यहां रहो चाहे वहां रहो क्या फर्क पड़ना, सब तो आपका ही। तत्काल उसे स्थाई राजा बना दिया। ये तो आख्याय का, हम लोग भी संसार में 100 वर्ष के लिए राजा रानी बन के आए हैं। स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र आप करने में, यदि आप यहां पुरुषार्थ करेंगे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वह राजा यदि बैठ जाता तो 12 महीने उस पर जाना पड़ता, जानवर का भोजन बनना पड़ता। पर राजा बनने पर सोया नहीं, हमेशा उद्यम परिश्रम करता रहा, अंत में यह लोक बन गया परलोक भी। ऐसे हम लोग भी इस लोक में व्यवहारिक कार्य को करते हुए यदि परलोक का ख्याल रखें, हम एक दिन जाना है पुरुषार्थ करें, इस लोक में भी नाम अमर हो जाएगा और परलोक भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कह दिया कि किम वा मृतम स्यात् सुखदा निराशा, संसार से निराशा करना और आत्मा से आशा। यदि आप संसार में आशा रखेंगे तो भगवान ने कहा आशा पासतिर बद्धा काम क्रोध परायण यन्ते काम भोगार्थम अन्याय नार्थ संचयान। आशा रूपी पास से यदि हमारा हृदय बन जाएगा तो हमेशा कामना क्रोध लोभ से दुखी सुखी होते रहेंगे। इसलिए आशा करना है तो भगवान से करे। तो संसार से निराशा और परमात्मा से आशा, यही आत्म प्राप्ति का प्रशस्त साधन है। चलो शेष कभी और श्रवण करेंगे। भगवान कृपा से आपने 5 श्लोकों तक प्रश्नोत्तरी का श्रवण किया, इसका हम लोग मनन करें। और आप जो है ना अपने जीवन में जो स्वाध्याय प्रवचन के छोर को कस के पकड़ के रखना एक हाथ से, और दूसरे हाथ से व्यापार करो, मना नहीं। बंबई में रहना है तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो कैसे काम चलेगा। पर एक छोर को आप प्रेमपुरी के स्वाध्याय प्रवचन को पकड़ के रखना तो नैया स्वयं भगवान पार लगा देंगे। प्रेम बोली सच्चिदानंद भगवान की।
नारायण नारायण नारायण। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। आप सभी सत्संग भाइयों को जय श्री कृष्ण। प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्वामी जी ने हमारे जीवन की बहुत ही उपयोगी बातें बताई हैं। हम जीवन के परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकें, परम पद को कैसे प्राप्त कर सकें, बड़े सरल शब्दों में स्वामी जी ने हमें बताया। जीवन में विवेक और वैराग्य की बहुत आवश्यकता है। उसी के द्वारा सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, उसका हम ज्ञान कर सकते हैं। हमें केवल ईश्वर का आश्रय लेकर निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से संतोष धारण करना है, सत्संग करना है। सत्संग के माध्यम से ही हम जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हमें और कुछ नहीं करना है, प्रेमपुरी में आना है, सत्संग करना है, अपना कल्याण करना है। जय श्री कृष्ण।